हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या भगवान कर रहे हैं और पिछले 9 बुधवारों से हम ये प्रसिद्ध श्लोक पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। हे अर्जुन, जो मेरे जन तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता से हमने प्रारंभ किया, जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन। इसमें देवकी वसुदेव जी का वर्णन इस पहलू को लेते हुए हम भगवान के जन्म से पहले उनके जो माता पिता हैं उनके विषय में क्या वर्णन किया गया है। तो देवकी और यशोदा में अंतर हमने समझा और इसमें हम ये जो 12 मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हम पिछले कुछ बुधवारों से कर रहे हैं, कैसे ये 12 चीजें हम अपने स्वयं के लिए बखूबी करते हैं, क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण के लिए ये करें। जैसे कि देवकी वसुदेव, जो देवकी वसुदेव ने किया, अपना सर्वस्व अर्पित किया, तो यदि हम हमारा सर्वस्व जानने की कोशिश करें तो 12 चीजों में निकाल सकते हैं। हम हमारा सर्वस्व उसको परिभाषित करें तो 12 चीजों में। अब तक हमने 10 मुद्दे इस पर चर्चा कर लिए हैं। पिछली बार हमने लिया था हाउ मच डू वी टॉलरेट फॉर आर सेल्व्स, हाउ मच वी हैव टू टॉलरेट फॉर कृष्णा, और ये हमने कुछ उदाहरण लिए थे। आपको यदि याद होगा महाशिवरात्रि के पर्व पर हमने भगवान शिव जी के 10 चिन्ह जो हैं उस पर चर्चा की थी। तो अब हम 11वें मुद्दे पर आते हैं, हाउ मच वी सैक्रिफाइस फॉर आरसेल्स। सैक्रिफाइस का हिंदी में अनुवाद है त्याग। हम कितना त्याग का जीवन जी पाते हैं, हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष इत्यादि को त्यागने की। अब देखिए ये सारे मुद्दे परस्पर इनमें संबंध दिख रहा होगा, सहनशीलता और यहां पर त्याग। परंतु यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से हम सैक्रिफाइस या त्याग की परिभाषा ढूंढने जाएं और सहनशीलता जिसकी परिभाषा हमने पिछली बार ली थी, तो बहुत अंतर है दोनों में। तो आज हम थोड़ा विस्तार से इस ये जो गुण हमारे अंदर है, त्यागपूर्ण जीवन जीने का गुण, चाहे वो हम स्वेच्छा से कर रहे हो या अनिच्छा से कर रहे हो, आइदर वी आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग वॉलंटरली और इनवॉलंटरली, बट वी डू हैव the capacity to sacrifice a lot. आप लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले मैं डिक्शनरी मीनिंग से शुरुआत करना चाहूंगा. डिक्शनरी में मैं आज दिया जा रहा था कि क्या जो स्टैंडर्ड डिक्शनरीज हैं वो लोग क्या परिभाषा दे रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग एज इट इज मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट किया है डिक्शनरी का मीनिंग एज इट इज है. एन एक्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर द सेक ऑफ समथिंग एल्स regarded as more worthy and important. हमारे सामने जब लिखित रूप में त्याग या सैक्रिफाइस की ऐसी परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा एहसास होता है हमें. हम फिर हमारे स्वयं के जीवन में झांक कर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से जगहों पर मैंने ये जो त्याग की परिभाषा है सैक्रिफाइस इसको जिया है, इसको सिद्ध किया है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर, परंतु इस वक्त आप लोग जो इस मंदिर में बैठे हुए हो, भगवद गीता समझने की कोशिश कर रहे हो, हां अक्सर हम इसकी चर्चा करते हैं कि जो हमारा मन है, जो तीन गुण हैं हमारे अंदर, जो कंडीशनिंग्स हैं, उसके विपरीत जाकर आप लोग यहां पर बैठे हुए. तो यदि ये एक बहुत ही सिंपल एक्ट आप लोगों का यहां पर टाइम पर आकर ठीक से बैठकर ध्यान से भगवद गीता का श्रवण करना, इसके अंदर कितने त्याग आपने कर दिए ऑलरेडी पिछले आधे घंटे में, अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी उसकी. कलयुग में यह बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि कलयुग में आजकल इतना भी कर पाना मुश्किल होते जा रहा. इसमें हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि हमें अभिमान हो जाए कि अच्छा तो फिर मैंने लिस्ट निकाल ली, आधे घंटे में अगर इतना त्याग हो गया तो फिर यदि मैं कैलकुलेट करूं कि मैं कितने बुधवारों से आ रहा हूं और उनकी लिस्ट निकालूं तो फिर कितनी लिस्ट निकल जाएगी, और क्या क्या अलग अलग समय पर वर्ल्ड कप चल रहा है, चल रहा है. तो हम इस परिभाषा को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी इसी प्रकार की परिभाषा दी गई है सैक्रिफाइस या त्याग के विषय में. तो उसको यदि हम संक्षिप्त रूप में और फिर विस्तारित रूप में दोनों में समझने की कोशिश करें तो क्या है कि ये एक सैक्रिफाइस की यात्रा, द जर्नी ऑफ सैक्रिफाइस, यदि उस हिसाब से इसको समझने की कोशिश करें तो हम हमारे जीवन में जब भी किसी वस्तु का या व्यक्ति विशेष किसी भी चीज का जब परित्याग करते हैं तो हमारे मन में हर समय एक विचार अहम रहता है, इनाम क्या मिलेगा इस त्याग के बदले, इनाम क्या मिलने वाला है कि नहीं. सो जस्ट लाइक द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन यू कैन नॉट सेपरेट, सिमिलरली सैक्रिफाइस एंड रिवॉर्ड in our consciousness we cannot separate. We always tend to do any kind of sacrifice, whether big or small, keeping in mind first what is the reward for that. Koi burai nahi uske andar, aap sharminda mat hoiye, उसके अंदर कोई बुराई, दिस इज नेचुरल। और हां, इसकी सराहना हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। खाली शास्त्र जो कहते हैं वो जो इनाम है, हम लोग इनाम की परिभाषा कुछ और कर देते हैं, हमारे शास्त्र इनाम की परिभाषा बदल देते हैं। और जब इनाम की परिभाषा बदल देते हैं शास्त्र, तो फिर त्याग की परिभाषा भी अपने आप बदलनी होगी, क्योंकि वो रिलेटेड है। अब बड़े बड़े जो राक्षस हुए हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े त्याग किए हैं। कई बार हमने उनकी भी चर्चा की है और भी करेंगे। तो यहां पर हम लोग सोच रहे होंगे, कई बार अगर हम तुलना करें अलग अलग स्तर पर, ऐसे ऐसे जो राक्षस आजकल के भी अगर हम लें, आतंकवादी इत्यादि, तो वो जो त्याग तमोगुण का होगा, परंतु फिर भी त्याग है। परंतु क्या इनाम के पीछे, क्या उसके अंदर वो चाह रहे हैं, उनकी आकांक्षा क्या, अभिलाषा क्या है, उसको यदि आप देखो तो समझ में आएगा कि व्यक्ति अपनी बुद्धि कहां इस्तेमाल कर रहा है, या जो सुबुद्धि है वो कुबुद्धि में कैसे परिणित हो रही है। इसलिए हमारी शुरुआत करेंगे हम द जर्नी ऑफ सैक्रिफाइस, कि कहां से इसकी शुरुआत होती है और इस यात्रा में क्या, किस दौर से गुजरना पड़ता है किसी व्यक्ति को इस त्याग की यात्रा में अंततः पहुंचने के लिए, कहां तक उसको वो जो इनाम चाहिए। तो हमने यहां पर एक सीक्वेंस आपके सामने प्रस्तुत किया है, बिगनिंग विथ सैक्रिफाइस, फेथ, होप, पेशेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी एंड फाइनली रिवॉर्ड। अब देखिए, हम जब भी हमारे जीवन में कुछ त्यागना चाहते हैं या त्यागना पड़ता है, दोनों यदि श्रेणियां हम लें, वॉलंटरली इनवॉलंटरली, तो सबसे पहले विश्वास या श्रद्धा, फेथ है कि नहीं। जैसे हम लोग यहां पर हर बुधवार को एकत्रित हो रहे हैं, बहुत कुछ त्याग कर यहां पर हम एक डेढ़ घंटा बिताते हैं, कई इनकन्वीनियंसेस भी होते हैं हमें, तो हमें श्रद्धा किस पर है? भगवत गीता, भगवत गीता पर श्रद्धा है, जो कि भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को सुनाई, और हम बचपन से इस भगवत गीता के विषय में थोड़ा बहुत यहां वहां सुनते आए। तो हो सकता है कि आज के इस सेशन में कई होंगे जो पहली दफा आ रहे हो, कई हम लोग हैं जो कितने बुधवारों से आ रहे हैं, तो पहली दफा भी जो आया होगा आज, उसके मन में भी थोड़ी बहुत श्रद्धा है पहले से, इसलिए आया है। चाहे किसी में भी श्रद्धा हो, उसको हो सकता है कि उसका कोई दोस्त बोल दिया होगा, वो बोल दिया होगा कि मुझे भगवत गीता पर विश्वास नहीं, तो उसने, उसके दोस्त ने, किसी ने बोला होगा, अच्छा ठीक है तू आके कीर्तन सुन, गाना तो सुनना अच्छा लगता है ना तेरे को, म्यूजिक, यू लाइक म्यूजिक, हाँ म्यूजिक ठीक, बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, मुझे म्यूजिक में भी इंटरेस्ट नहीं, खाने में तो है। खाना फ्री में मिलता है, खाना फ्री में, और खाना बोल रहा हूं मैं, खाना वो नहीं, वो सत्यनारायण का इतना सा प्रसाद, पूरा प्लेट भर के खाना मिलेगा। अच्छा श्रद्धा, हाँ पक्का फ्री में, हाँ फ्री में, और वो भी गर्मा गर्म, वो लोग प्रोग्राम के दौरान ही बनाते रहते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि वो कहीं पिछले हफ्ते का सड़ा हुआ खिला रहे हैं, एकदम फ्रेश, और वहां का जो स्वाद है वो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि और कहीं पे जुगाड़ लगा के तू कर ले, नहीं, चाहे किसी भी होटल में चला जाए, किनारा से लेके मचान तक चढ़ जाओ तुम, तो उसके अंदर श्रद्धा कोई भी प्रकार की, या उसके अंदर कोई एक ऐसा विचार आ जाए कि इतने लोग अगर जा रहे हैं, अगर यहां पर 600 से 700 लोग हर बुधवार को आकर बैठते हैं और वो लोग 7:30 से लेके 9:30 दो घंटा यहां पर वो बिताते हैं, तो कुछ तो हो रहा होगा ना। इतना बड़ा वो 3 लाख का कैमरा लगा रखा है इन्होंने, ये पूरा प्रोजेक्टर, ये वो, इतने खर्चे का काम है, FM लगा दिया बेटा, तो इतना ये लोग सब जब तामझाम व्यवस्था करते हैं तो किसी के मन में विचार आए कुछ तो हो रहा होगा, तो शुरू हो गई उसकी श्रद्धा। आप बताइए कि आपके जीवन में क्या आपने कोई ऐसा कभी त्याग किया है बिना श्रद्धा के? हम बोल रहे हैं कि श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है और उसके बलबूते पर ही कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का त्याग कर पाएगा। हां, वो श्रद्धा धीरे धीरे हमारी बढ़ती है। जैसे कि जब हम पहली दफा मंदिर में आए, तो पहली दफा जब हम मंदिर में आए तो हमें हमारी श्रद्धा, जिसको कहते हैं कोमल श्रद्धा थी, और इतना ज्यादा हम सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे जो बाकी बड़े बड़े भक्त यहां पर करते दिखते। जो भी हमको अगर भक्त कोई लाया, या हम ऐसे ही घूमते फिरते टहलते हुए आ गए अंदर, यहां पर देखा सब तिलकधारी शिखा और ये सब घूम रहे हैं दंडवत, और हाथ ऊपर कर हरे कृष्णा, और थोड़ा अलग ही प्लानेट है यहां पर, तो उसको पहली दफा जब आता है तो उसको देख, उसको लगता है कि मैं इतनी जल्दी ये जो कर रहे हैं, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं करूंगा, बाद में भी सोचूंगा, तो पहले वो एकदम हिचकिचाते हुए एंट्री करता है, देखता है ये कौन है, सबसे ये मतलब हिल क्यों नहीं रहे, ये बैठे हैं ये कब से, फिर पूरा वो क्या उसको कहते हैं मुआयना करता, मुआयना, he sees everything with some doubt, not complete in unflinching faith but some doubt always, फिर धीरे धीरे जब उसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई यहां पर बाहर की तुलना में शांति ज्यादा है, यहां पर कुछ अलग ही वाइब्रेशंस हैं, धीरे धीरे उसको फिर श्रद्धा उसकी बढ़ती है। फिर जब उसको कोई भक्त मिलते हैं, अच्छे से प्रेम से बात करते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ नॉर्मल लोग हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं। फिर उसको जब हम हमारे गेस्ट रिसेप्शन कहते हैं कि पहली दफा जो आए आप लोग खड़े हो जाइए, फिर उसको खड़े क्यों होने बोल रहे हैं, हाँ बहुत बार उनको लगता खड़े क्यों होने बोल रहे, फिर वो कहते हैं 2 मिनट के लिए, अच्छा 2 मिनट के लिए ठीक है, फिर अचानक हरी बोल सब तीन बार, ये क्या हुआ, उनको वेलकम किया हरी बोलो थोड़ा, फिर उनको लगता अच्छा मेरे लिए था, इतने मंदिरों में गया आज तक मुझे कभी इतने जोर शोर से किसने, सब लोग इतने 800 लोग हाथ ऊपर कर हरी बोल कर मुझे वेलकम कर रहे हैं, मैं कभी घर पे मुझे ऐसा वेलकम नहीं, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें होती, कोई किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाए, कोई हरी बोल से अट्रैक्ट हो जाए, कोई कोई पेंटिंग से अट्रैक्ट हो जाए, कोई किसी से, तो उसकी श्रद्धा फिर धीरे धीरे बढ़ती है। फिर श्रद्धा के पश्चात होप्स, हमारी आशाएं, कि जब हमें बताया जाता है, चाहे हम कहीं पर भी जाएं, यहां पर तो हम मंदिर का उदाहरण ले रहे हैं, ये बताया जाता है कि आप आते हैं ना, कई बार हम लोग त्रस्त अवस्था में ही आते हैं कि कोई डिप्रेशन केस है, कोई पूरा स्ट्रेस्ड है, कोई पूरा परेशान है, कोई मायूस है, झगड़े करके आया बाहर से यहां वहां, कुछ बात बन नहीं रही है, या बात बात बन चुकी है उसको बरकरार रखने के लिए, तो हर स्थिति में फिर बताया जाता आप ये माला जप कीजिए, एक माला, बस एक माला शुरू, आप देखिए फिर वो माला शुरू करता है तो उसको लगता है कि एक अलग ही एक्सपीरियंस उसको माला जप करने का। कितने भक्त बताते हैं जब वो माला शुरू करते हैं तो एक ऐसा फ्लेवर, एक ऐसे रेल्म में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उस समय के लिए, फिर उनका फेथ धीरे धीरे, आशा उसमें बढ़ती है, सो होप्स, और फिर वो देखते हैं कि हाँ जिसने मुझको बुलाया उसके जीवन को पहले से जानते थे, अरे इसके अगर इसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया, इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ गया जिसका कच्चा चिट्ठा मैं बचपन से जानता हूं, यहां पर आने के बाद ये ऐसा हो गया, होप्स बढ़ जाते हैं, अगर ये ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, या अगर मैं बदल सकता हूं तो और कोई क्यों नहीं, फिर वो प्रचार करना शुरू करता है। प्रचारक किस भाव में प्रचार शुरू करता है कि अगर मैं बदल सकता हूं तो हर कोई बदल सकता है, ये प्रचारक की नम्रता होती है। फिर आशा, आशा बंद रूप गोस्वामी कहते, उसके बाद धैर्य, धैर्य रखना पड़ता है। कहीं पर भी आप जाओ, जॉब मिलने पर भी 30 दिन तक धैर्य रखना पड़ता है, फिर तनख्वाह हाथ में आती, तनख्वाह हाथ में आती, करारे नोट असली नोट हैं, जाके देखते हो मार्केट में सामान मिल रहा है उससे, है ना, धैर्य, पेशेंस। अब देखिए वो पेशेंस के दौरान क्या होता है, व्हेन वी आर पेशेंट, what we do during the period of patience is the most important, discipline, humko discipline maintain rakhna, isliye sadhana bhakti mein bhi bhakton ko hum kehte hain ki ha theek hai aap jab shuru kijiye phir 10 naam apradh hain wo bhi sikh lijiye, wo kya hai, kaise usko avoid karo, 4 niyam kya hain wo bhi, आपके पूरे लाइफस्टाइल को कैसे आप सुधारो, सब कुछ बताया जाता है। तो डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन के अंदर अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वो डिसिप्लिन भी टिकेगा नहीं, वो टिकने नहीं वाला, क्योंकि उस डिसिप्लिन की शुरुआत हमारे स्वयं से करनी है, हमें हमारे अंदर से, और उसके अंदर तपस्या है, ऑस्टेरिटी, इसके अंदर तपस्या है, ये सारे जो यहां पर है ना, ये पेशेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मीठे नहीं लगते सुनने में, है ना, जैसे मैं अगर आपको एक शब्द कहूं तो वो शब्द सुनते ही आपके मन में एकदम ऐसे मिठास फैल जाएगी, रबड़ी, है ना, ऐसे मिठास फैल जाती है रबड़ी से, करेला, तो ऐसे ये सारे जो शब्द है ना, पेशेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, ये सब अंदर मिठास नहीं लाते तुरंत, हाँ रिवॉर्ड। अब देखिए कोई कहेगा प्रभु जी सीधा उधर से उधर आया, रुकी नहीं, निकाला आपने, हाँ कितना इजी होता ना, एक एरो भाई, इतने सारे एरो निकाले आपने, यहां से वहां जा रहे हैं, एक उसमें से सीधा सैक्रिफाइस से रिवॉर्ड, कितना अच्छा लगता है। जैसे हम कह रहे थे एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन, नोबडी वांट्स टू डाई, तो ये एक हमने जो यात्रा के अंदर स्टेशन आते ना, मैप आपके सामने, मैप में बताया जाता है कि आप यहां से अगर जा रहे हो दिल्ली जा रहे हो तो क्या क्या स्टेशन आएंगे, झांसी भोपाल भुसावल इत्यादि क्या क्या स्टेशन हैं। तो ये सारे स्टेशन हैं और ये स्टेशन ऐसे कई कई स्टेशन में गाड़ियां बहुत लंबी लंबी रुकती है ना, कई स्टेशन में थोड़े समय के लिए रुकती है, कई स्टेशन में खड़ी रहती है गाड़ियां, बस आप नहा लो धो लो सो लो सब कर लो गाड़ी खड़ी है। वैसे ही इसमें से कई स्टेशन ऐसे हैं हमारी गाड़ी कई जन्म तक खड़ी रहती है, कई बार तो निकली हमारी गाड़ी फेत वहीं खड़ी हो गई, गाड़ी निकलती है स्टेशन से वहीं पर आगे रुक गई, सिग्नल नहीं मिल रहा है कुछ नहीं, तो कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी फेत पे ही अटकी हुई है गाड़ी, उससे आगे जा ही नहीं रही है। और कई बार तो होता क्या है कि हम चेन खींचते रहते हैं बीच में, नहीं 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 गाड़ी को इतनी जल्दी आगे मत जाना। तो इसलिए ये जो हमारी यात्रा है इस त्याग की यात्रा, ये ठीक से आप नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है कि हम लोग सब हमारे व्यक्तिगत रूप से नोट डाउन करें कि मैं कौन से स्टेशन पर अटका हुआ हूं, या हो सकता है कि कई हो जो अपने गंतव्य स्थान को भी प्राप्त कर चुके होंगे, ये भी संभव है, परंतु जानना आवश्यक है। अब जब हम त्याग को और विस्तार से समझने की कोशिश करें, घबराइए मत, अभी एक एक कर बताएंगे आपको कि ये क्या है। आप सोच रहे होंगे तीर तो छोड़ दिए प्रभु जी, अभी किसको मार रहे हैं तीर। तो हमारे जीवन में हम कैसे अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से हम त्याग को महसूस करते हैं, सैक्रिफाइस, हाउ वी फील एंड एक्सपीरियंस सैक्रिफाइस इन आवर लाइफ एट वेरियस लेवल्स। तो आप देखो हमारा बचपन, जवानी, जो पैसा, रिलेशनशिप, ऐशो आराम, फाइनली ये पूरा जीवन। हम लोग अब बड़े हो चुके हैं, कितनी बार हम अपने बचपन की तस्वीर देखते हैं तो अक्सर क्या डिस्कशन होता है अपने बचपन की तस्वीर को देखकर, क्या वो दिन थे मेरे बचपन के, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन, बचपन के दिन। अब देखो हमने हमारा बचपन उसका त्याग किया। आजकल तो छोटे से बच्चे मैं देख रहा हूं कि वो चलना सीख नहीं पा रहे हैं, संभल नहीं है, अभी तक संभले नहीं है, तो फिर उनके लिए चलो हो गया वो प्ले स्कूल, फिर बाद में केजी, लोअर केजी, हायर केजी, फिर बाद में ये सब, और ऐसे बड़े बड़े बस्ते लेकर जाने पड़ते हैं उनको। रोज सुबह मैं देखता हूँ हमारे सारे बिल्डिंग के छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए वो सब स्कूल बस आती है तैयार होकर। अभी वो छोटे बच्चों को आप देखो छुट्टी के दिन जब स्कूल नहीं जाना है कितने बजे उठते हैं, और वही सुबह 7 बजे एकदम टिप टॉप तैयार हैं, नहा धो के पाउडर लगाकर पूरा बस्ता, और वो भी बस्ता पता नहीं क्या, छोटे छोटे बच्चों के उनका स्कूल बैग इतना। एक छोटे बच्चे को पूछा गया, बेटे बड़ा होके क्या बनेगा, उसने कहा कुली बनूंगा। कुली क्यों भाई, देख लो वजन देख लो बस्ते का मेरा, अभी से ट्रेनिंग मिल रही है। तो क्या क्या हमको त्यागना पड़ता है ना। बचपन में बच्चे जो हैं उनको एक ही चीज चाहिए बस, उनको केवल मस्ती खेल वही चीज चाहिए। लेकिन फिर माँ बाप जो हैं उनको कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, क्योंकि जो अभी माँ बाप बन चुके हैं उनके माँ बाप ने भी वही किया था उनके साथ, और उनके माँ बाप ने भी वही किया, इसे कहते हैं परंपरा। तो वो बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो होगे खराब। तो पढ़ो लिखो उनको बताया जाता है। फिर शुरुआत में बच्चे इतने रोते हैं, नहीं जाना है स्कूल, नहीं जाना है, तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे को स्कूल भेज रहे हो, वहां पे और दुश्मन वेट कर रहे हैं मेरे। एक बार एक माँ अपने बच्चे को सुबह सुबह उठा रही है, बेटा स्कूल जानी अच्छी बात, स्कूल जाओ बेटा स्कूल जाओ, देखो अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं। नहीं जाना मुझे। अच्छा अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना, रोना नहीं बेटा, उठो 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 उठो, देखो लेट हो रहा है, टाइम हो गया जाना है। तो बेटा पूछता है माँ मुझे दो कारण बताओ मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए, दो असली असली अच्छे कारण बताओ मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए। माँ ने कहा पहला कारण तो वो स्कूल तुम्हारा है और दूसरा कारण तुम प्रिंसिपल हो। तो चाहे वो प्रिंसिपल भी हो स्कूल का, उसके लिए भी तपस्या है जाना। तो बचपन से शुरू हो जाती है ये त्याग का जीवन, क्या क्या हमारा फ्रीडम, खेल, ये सब कुछ त्याग कर फिर हम लोग सोचते हैं कि हाँ अभी मैं जब स्कूल के अंदर ये सब होमवर्क, यूनिफॉर्म, सब अटेंडेंस, कॉलेज, बस कॉलेज पहुंच जाऊं फिर मैं मुक्त जीव, मुक्त आत्मा हो जाऊंगा। कॉलेज पहुंच जाऊं फिर वहां पर जो पढ़ना, ऐसा नहीं कि स्कूल जाओ के वहां पर बस बैठना है कि हाँ टाइम बिताना है शाम तक जब तक स्कूल है फिर आ जाओ, नहीं वहां पर आपको ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है और वो होमवर्क भी दे देते हैं, घर पे भी नहीं छोड़ेंगे, घर पे भी चालू रहो, होमवर्क दे देते हैं, फिर ट्यूशन ये वो, छोटे छोटे बच्चों के इतने मोटे मोटे चश्मे आजकल, पढ़ाई क्या क्या पढ़ाई उनको करनी पड़ती है। एक हमारे ब्रह्मचारी, हम लोग एक यात्रा में गए थे साउथ इंडिया यात्रा में, तो उन्होंने देखा बच्चे रामेश्वरम में, वहां पर बच्चे एक घंटा चलकर जा रहे थे स्कूल, बस्ता लेकर एक घंटा चलकर, कोई साधन भी नहीं था उनके पास। तो ब्रह्मचारी ने कहा भगवत धाम वगैरह तो ठीक है, पता नहीं वो प्राप्त होगा कि नहीं, लेकिन एक कारण की वजह से मैं वापस जन्म नहीं लेना चाहता, पुनर्जन्म न विद्यते, स्कूल नहीं जाना मुझे वापस। और उसके बाद में फिर आजकल जो कंपटीशन कि भाई इसके घर में उसको इतना, उसको इतने परसेंटेज मिले, इसको इतने परसेंटेज मिले, तुम्हारा बेटा देखो क्या कर रहा है, कई बार घर में अक्सर चर्चाएं क्या होती है कि वो देखा बगल के शर्मा अंकल, उनके घर के लड़के क्या उसको परसेंटेज मिल रहे हैं, और वो वर्मा के घर पे देखा, शुक्ला जी के घर पे देखा, इनके घर पे उनके घर। पति पत्नी सब चर्चा कर रहे थे, अब रिजल्ट आ चुका था स्कूल का, चर्चा कर रहे थे तो बोले कि अरे जो हमारे पड़ोसी हैं उसकी लड़की को 99% मिला है 8th स्टैंडर्ड में, 99%। तो पत्नी कह रही थी अपने पति से, तो पति पूछता है तो वो 1% कहां रह गया उसका, 99% मिला है, 1% कहां रह गया, वो तुम्हारे बेटे को मिला है। तो जैसे एक मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि वो जब मेडिकल कॉलेज में गए तो मेडिकल कॉलेज में उनको लगा कि बस अब मेडिकल कॉलेज में एंट्री हो गई है, एडमिशन हो गए हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, बस अब तो बस डॉक्टर बनने की देरी है, बस कुछ ही साल, कुछ ही साल, और फिर वो सब स्टेथोस्कोप लगाकर व्हाइट कोट पहनकर भी घूमते ना मेडिकल कॉलेज, ऐसे लगते मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। तो बता रहे थे कि जो सबसे पहले उनका जब एनाटॉमी क्लास होता है, एनाटॉमी क्लास जानते हैं आप क्या होता है, ये जो क्योंकि शरीर के डॉक्टर हैं तो शरीर मुर्दे को लेकर आते हैं, सबसे पहले मुर्दे को लेकर आते हैं और मुर्दे को काट उसको काट कर बताते हैं ये इसका गुर्दा है, ये इसका पेट है, सब कुछ दिखाना होता है। तो ऐसे ही एक मेडिकल कॉलेज में फ्रेश बच्चे अभी भर्ती हुए हैं उस कॉलेज में, सबसे पहला क्लास उनका एनाटॉमी का क्लास, तो उनका प्रोफेसर, एनाटॉमी का प्रोफेसर सब बच्चों को इकट्ठा करता है, बीच में मुर्दा, वो देखते हैं। हाँ, हम लोग खाली चर्चा कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता, पहले जब मुर्दे को देखते हैं वो लोग, तो है डॉक्टर यहाँ पर देखे होंगे सब लोग, तो मुर्दा रख गया सामने, मुर्दा रख दिया उनके, प्रोफेसर ने कहा डॉक्टर बनना है सबको, सब लोग हाँ हाँ सर इसलिए तो आए। हाँ, तो दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर को समझने के लिए, सबसे पहले दो लेसन। तो सब लोग अभी ध्यान से अपना एकदम नोट पैड वगैरह ले लिया, मुर्दा सामने, सबसे पहला दो लेसन प्रोफेसर बता रहे हैं। प्रोफेसर ने क्या किया, प्रोफेसर ने कहा ये जो शरीर है कभी घिन मत करना इससे, चाहे वो मरा हुआ क्यों ना हो, घिन नहीं होनी चाहिए अंदर से, घिन समझते ना। हाँ हाँ सर, घिन कभी नहीं होनी चाहिए। अच्छा समझ गए, हाँ समझ गए। तो प्रोफेसर ने क्या किया, अपनी उंगली ली और मुर्दे के नाक में डाले और मुंह में डाल के चाटने लगा, एक ने दूसरे को कहा मैं तो जा रहा हूं भाई, मेरे को नहीं बनना है डॉक्टर। ये पहला लेसन है, मुर्दे के नाक में उंगली डाल के चाट रहा है, ये कौन सा लेसन है। डॉक्टर ने, वो प्रोफेसर कह रहा, सबने पहला लेसन सीखा कि नहीं, अब करो, अब करने के लिए भी कह रहा है। सब कह रहे हैं भैया पिताजी ने 10 लाख रुपए दिए, करो भाई, आंख बंद करके एक एक करके सब उंगली डाल रहे हैं नाक के अंदर, आंख बंद करके। एक ने कहा भगवान करे मुर्दे को सर्दी नहीं थी, मरते समय नाक साफ था शायद इसका, भगवान। सब ने एक एक कर कर जो प्रोफेसर ने कहा सब ने ईमानदारी से किया, प्रोफेसर ने सब ने किया। हाँ सब ने, प्रोफेसर बस हो गया, डॉक्टर बनूंगा ना। अब दूसरा लेसन दूसरा लेसन ये है कि प्रोफेसर जब भी कुछ कहे उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरी ये उंगली उसके नाक में डाली थी और ये उंगली मेरे मुंह में डाली थी। इतने बेवकूफ यदि तुम रहोगे तो खाक डॉक्टर बनोगे तुम। हाँ, तो कई होते हैं जो वो सहन नहीं कर पाते मुर्दे को देखना, उसको काट कर दिखाते हैं सब कुछ, कईयों को तो उल्टियां हो जाती है, वो बोलते हैं कि भैया बीकॉम ही ठीक है। पैसा। अब इतनी मेहनत की, प्ले स्कूल से लेके डॉक्टरी या इंजीनियरिंग जो भी कुछ किया पैसा कमाने के लिए। अब वो पैसा कमाने के बाद फिर करना क्या है, उस पैसे का खर्चना है। इतनी मेहनत करने के बाद मेहनत की कमाई जब कोई खर्चने जाता है तो उसके अंदर एक चुभन होती है, है ना, चुभन होती है। मुफ्त का कुछ है तो उसमें चुभन नहीं होती, लेकिन खुद की कमाई जब वो खर्च उसका जब होता है तो अंदर एक छोटी सी चुभन होती है, मीठी चुभन होगी शायद कि हाँ मेरी कमाई का पेड़ा मिल रहा है, मेरी कमाई का घर, मेरी कमाई की कार इत्यादि जो भी कुछ। लेकिन हम में से हर समय कोई व्यक्ति यही चाहता है कि क्यों ना एक ऐसी स्थिति, ऐसी जादू स्थिति मेरे जीवन में आ जाए कि खर्चा भी हो पैसा भी बचा रहे, खर्चा भी हो पैसा भी बचा रहे। हाँ? कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, रबड़ी की जैसे। एक मैं हाल ही में बंबई गया था तो वहां पर एक व्यक्ति मुझे कह रहे थे कि उन्होंने बहुत आलीशान एक गाड़ी कोई खरीदी और वो आलीशान गाड़ी उनको पड़ी कुछ 95 लाख की, 95 लाख की जैगुआर। और वो कह रहे थे कि वो खरीदने के बाद जो टेंशन उनके जीवन में शुरू हुई, और वो भी बंबई में चलानी है वो गाड़ी, सोचो इंडियन ट्रैफिक में बंबई में वो गाड़ी चलानी, तो उनकी जो टेंशन शुरू हुई, क्या टेंशन शुरू हुई कि भाई इतनी आलीशान गाड़ी कोई रिक्शा वाला क्या, उसको क्या है, वो तो रिक्शे वाले तो घुमाते रहे थे, घुमाकर एक मेरे को स्क्रैच मारकर चला गया, मेरी इतनी आलीशान गाड़ी पर स्क्रैच, तो चलाते समय मैं पूरी टेंशन में चलाता हूं गाड़ी को, हर समय स्ट्रेस रहता है मेरा कि कोई स्क्रैच ना मार जाए, कुछ हो ना जाए। ठीक है, मैं सोच रहा था कि गाड़ी ऑफिस पहुंचने के बाद जब गाड़ी को मैं पार्क कर दूंगा तो फिर मेरी टेंशन दूर, पार्क कर दी उसने, ऑफिस में बैठा है टेंशन है, कोई बगल वाला रिवर्स लेते समय तो नहीं कुछ कर, तो बार बार जाकर चेक करते थे सब ठीक है ना, पार्किंग में खड़ी कोई स्क्रैच तो कितना टेंशन उसको खरीदने के बाद उसका कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और बंबई में कई तो ऐसे केसेस होते हैं कि अगर किसी ने इतनी कीमती गाड़ी खरीदी है, 1-1 करोड़ की अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो वो शोरूम से निकला घर पहुंचने से पहले कितने आनंद में निकलेगा ना शोरूम से, एक करोड़ की गाड़ी चला रहा हूँ मेरी है, मेरे नाम पे मैं घर जा रहा हूँ, इसको चलाकर फोन आता है, अच्छा भैया 1 करोड़ की गाड़ी यहाँ पे 20 लाख पहुंचा देना, ये सच बात है। इसलिए मैं कह रहा था कि अक्सर जब कोई इतने ऊंचे ऊंचे सपने संजोता है तो वो जब तक सपनों के रूप में होता है ना तब तक अच्छा लगता है। द कार दैट कॉस्टली लुक्स ब्यूटिफुल एंड गिव्स यू प्लेजर अंटिल इट लीव्स द शोरूम, शोरूम तक बहुत अच्छा लगता है, बता रहे ये आपकी गाड़ी है, ये आपका कलर है, वो सब पेपर बन रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, मेरे लिए मेरा नाम, मेरा नाम लिखा, हाँ आपका नाम लिखा ना, ये नंबर है, नंबर भी याद हो जाता है 2 मिनट में, अच्छा मेरी गाड़ी का नंबर, सब कुछ। अब जैसे ही शोरूम से गाड़ी आप निकाले टेंशन शुरू, क्योंकि अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अभी आपकी हो गई, तब टेंशन शुरू, क्योंकि उसके अंदर इतना पैसा डाला हुआ है, तो इसलिए छूटते नहीं है पैसे। हाँ, जो हो जाए वो पैसों को अभी दो रुपया उसका चार करें, चार का आठ, आठ का दस, दस का पचास हजार, पचास का एक करोड़, उसका करते रहें करते रहें करते रहें, उसको उसका त्याग करना। और वो भी मान लो अगर मंदिर में कोई मंदिर वाला आ जाए जन्माष्टमी के लिए, भगवान को जन्माष्टमी उनकी मनेगी, पंचामृत उनको चढ़ेगा, 108 भोग उनको चढ़ेगा, मुझे क्या मिलेगा? हाँ आपको पुण्य मिलेगा। देखा किसने है, श्रद्धा नहीं होने की वजह से वो निकलता। और जहां पर उसका रिवॉर्ड मिलता रहता है वहां पर देखो 30-30 घंटे लाइन पे खड़े हैं लोग। उनको पता है कि ये भगवान जो है वो अच्छे स्कीम वाले भगवान है, डील अच्छी है ये भगवान की। ऐशो आराम, हमारे कंफर्ट्स, क्या क्या नहीं। कई तो ऐसे ऐसे दूर दराज देशों में जाकर वो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तुर्कों के देश में, कोई मुसलमान देश में, यहां वहां जाकर कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं। कितनी ऑस्टेरिटीज, कितना सैक्रिफाइस, हम लोग सब वाकिफ हैं इससे। और फाइनली वी सैक्रिफाइस आवर एंटायर लाइफ। जैसे अंग्रेजी में एक सुंदर कॉम्पोजिशन है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज डाइंग टू ग्रो अप to become a youth, when I became a youth I was dying to marry, when I got married I was dying to have children, when I had children I was dying when they will grow up and have their own children. Now they have grown up, they have their own children, and I am so old that I am now actually dying. I was dying to become a young man, a married man, a father, a grandfather. Now I am actually dying and I have realized I forgot to live. So we keep on dying looking for life to the point of giving up that life. अब देखिए इस विषय में हाल ही में मैं मेरे कुछ पुराने बैचमेट्स एयरफोर्स के, उनके चर्चा कर रहा था। तो एक जो देश प्रेमी होता है, जैसे हमारे भारत के क्रांतिवीर हुए, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया देश के लिए। तो मेरा ये बैचमेट मुझे कह रहा था कि आजकल जो आतंकवाद फैला हुआ है वो लोग भी बलिदान कर रहे हैं, अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, अपने शरीर पर बम लगाकर उसे पता है कि ये बटन दबाने से उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, कितना बड़ा बलिदान कर रहा है वो। लेकिन उसको इनाम क्या बताया जा रहा है, जन्नत मिलेगी, हूर परियां मिलेगी वहां पर, क्या क्या उसको विश्वास दिलाकर, हमने वो वीडियो दिखाया था कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता, दैट ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज वेरी यूथ। ताज के जो अटैक हुए थे, जो जो वहां पर आए थे ताज होटल में अटैक करने, वो लोग सब 18, 19, 20 ये अपने आयु के थे। तो ये बैचमेंट मेरा कह रहा था, इफ दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म, व्हाई कांट वी सैक्रिफाइस आवर लाइव्स टू प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड। तो थोड़ा मेरे अंदर उन्होंने वो जोश पैदा कर दिया पुराना वाला। तो इसलिए मैं कुछ स्लाइड्स आपको, क्या क्या हमारी चर्चाएं हुई और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कोट्स, सैक्रिफाइसिंग वंस लाइफ, हाउ अ सोल्जर सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर द कंट्री, इट इज क्लोज टू समवन हैविंग अ सेल्फलेस सैक्रिफाइस. वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनेस्ट पेट्रियट्स ऑफ आर कंट्री, उनके बारे में हम चर्चा कर. तो कुछ हमारे चर्चा में कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स जो हमको उस जमाने में सुनाए जाते थे सैक्रिफाइस के विषय में, वो सब की चर्चा हम करें. सबसे पहले कारगिल वॉर के ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे. अब देखिए, एक्चुअल ये हीरोज हैं जिनको बहुत कम प्रतिशत हमारी भारतीय जनता जानती है. यहां पर बैठे मैं अगर आपसे पूछूं तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि कौन थे ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे. और अगर छोटे बच्चों को बाहर जाकर पूछें या आजकल के टीनेजर्स को कॉलेज में जाके पूछें, मैंने एक बार एक टेस्ट लिया था एक कॉलेज में इन्हीं के विषय में लिया था, कैप्टन मनोज कुमार पांडे के विषय में लिया था. और मैंने पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू सिटिंग डू यू नो दिस पर्टिकुलर हीरो ऑफ आवर कंट्री. केवल दो लोगों ने हाथ उठाया. और उस सेमिनार में कुछ 250 बैठे हुए थे बच्चे, उसमें से केवल दो लोगों ने हाथ उठाए. ओनली टू पीपल न्यू दिस हीरो. एंड आई आस्क्ड, हाउ मेनी ऑफ यू नो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ऑल दीज हीरोज, सो कॉल्ड हीरोज. एवरीवन, ये कोई क्वेश्चन है? पागल आदमी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा इंडिया में? ये उनका रिस्पॉन्स था. ये एक्चुअल कोट है इनका. इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई स्वेयर आई विल किल डेथ. ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे कारगिल वॉर में 1999 इन्होंने अपना जीवन बलिदान किया. ये केवल कुछ 20-25 वर्ष के थे बस, अपने प्राइम यूथ में. और इनकी स्टोरी में बताया गया है कि ये बचपन में इनके पिताजी भी आर्मी में थे, तो बचपन में अपने पिताजी से कहते थे कि मुझे यदि बड़ा होके कुछ करना है तो मुझे हमारे जो शत्रु है ना, कौन आप जानते हो, बस उनको खत्म करना है. ये जुनून बचपन से इनका था. इनका जब SSB इंटरव्यू के अंदर इनको पूछा गया, जो आर्मी का रिक्रूटमेंट इंटरव्यू होता है, तीनों फोर्सेस का होता है, SSB बोलते हैं उसको, तो SSB इंटरव्यू में जब कैप्टन मनोज कुमार पांडे को पूछा गया, व्हाई यू वांट टू जॉइन द आर्मी, इन्होंने एक ऐसा आंसर दिया. इन्होंने कहा, आई वांट टू गेट द परमवीर चक्र. और अगर यदि आप जानते हैं, परमवीर चक्र मिलना आसान बात नहीं है. पूरे आर्म्ड फोर्सेस में परमवीर चक्र मिलना मतलब आपको बहुत ही पहुंचा हुआ एक योद्धा होना है. उसके लिए आपने कोई इतना बड़ा बलिदान अगर इंडिया के लिए किया, तब जाकर परमवीर चक्र. और 1999 में यहां पर आप पढ़ो, PVC परमवीर चक्र होल्डर. इन्होंने अपने SSB इंटरव्यू में बोल दिया था, आई एम ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी फॉर वन रीजन, टू गेट द परमवीर चक्र, वेदर आई एम अलाइव और वेदर आई एम डेड, विच मीन्स आई वॉन्ट टू सर्व अवर मदरलैंड इन दिस वे. कितने लोग जानते हैं इंडिया में ये एक्चुअल हीरो को? वेरी फ्यू. इट्स गुड यू नो. तो कुछ हमारी जब चर्चा चल रही थी तो इनका जिक्र निकला, तो मुझे ये इनका कोट याद आया. और हमारे इंटरेस्टिंग कोट्स, इंडियन आर्मी का एक फेमस कोट है, इफ यू गो होम अलाइव देन टेल देम दैट फॉर देयर टुमारो वी सैक्रिफाइस्ड आवर टुडे. May God have mercy on our enemies because we won't. ये हमारा फेमस स्लोगन था इंडियन एयरफोर्स में. कि मतलब हमको जब सुनाए जाते थे ये सब की वॉर स्टोरीज, और उसके अंदर जो हमारे अंदर वो जुनून पैदा किया जाता था, जोश पैदा किया जाता, ऐसे ऐसे एक एक कोर्स, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर एक्सेट्रा। ये बहुत ही सुंदर कैप्टन विक्रम बत्रा, इन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया। आइदर आई विल कम बैक आफ्टर होइस्टिंग आवर ट्राइकलर फ्लैग और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट, बट आई विल बी बैक फॉर श्योर। वी आर टॉकिंग ऑफ सैक्रिफाइस। इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज आइदर लाइंग और इज अ गोरखा। हमारे फील्ड मार्शल मैनेकशॉ, इन्होंने कहा था, इट माइट बी गॉड्स जॉब टू फॉरगिव द पाकिस्तानीज बट इट्स माई जॉब टू फिक्स देयर अपॉइंटमेंट विथ हिम। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एम आई बीइंग बायस्ड इन टॉकिंग अबाउट द सोल्जर्स एंड द टेररिस्ट। अब देखिए, हम तो भूल भी चुके होंगे किसको, 26/11 भूल भी चुके होंगे, 26/11 को क्या हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय मैं बंबई में ही था और ये सारे जो फायरिंग्स चल रहे थे, हमको इसकी आवाज सुनाई दे रही थी हमारे चौपाटी मंदिर के एक लेन छोड़कर, ये कसब को पकड़ा था वहां पर। तो मुझे अभी भी वो याद है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक नमूना, उस दिन आतंकवादियों ने किया क्या और क्यों हमें, हमारे अंदर कम से कम एक ऐसे बलिदान की भावना हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उन्हीं की तरह हम व्यवहार करें, परंतु कम से कम हमारे अंदर एक ये सीख जानने की कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कुछ बलिदान किया इस समाज के लिए, हमारे देश के लिए, क्या हमारे अंदर उनके प्रति कृतज्ञता है क्या थोड़ी बहुत। तो ये एक दो वीडियो है, आप थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रांग मैसेज है, लेकिन वो मैसेज आप लीजिए, जो उसका ग्राफिक डेमोंस्ट्रेशन है उसको क्षमा कर दीजिएगा। ओके, रीबोल। तो मुझे याद आ रहा था जब सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी शुरू करने की सोची, तो समय एक व्यक्ति अपाहिज, अ क्रिपल्ड पर्सन, अपाहिज व्यक्ति नेताजी बोस के पास आया और कहा कि मुझे इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करना है। तो बहुत उनका उत्साह तो सराहनीय था। नेताजी ने पूछा कि लेकिन आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, यू आर हैंडीकैप्ड। तो जो उन्होंने जवाब दिया वो रोंगटे खड़े करने वाला जवाब था। तो उन्होंने नेताजी बोस से कहा कि हां, मैं अपाहिज हूं, मैं बंदूक लेकर शत्रु पक्ष पर प्रहार तो नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना कर सकता हूं कि अपनी छाती आगे कर शत्रु पक्ष की एक गोली कम कर सकता। इसलिए हमें बताया जा रहा था पाकिस्तान और कब्रिस्तान में सिर्फ वायुसेना के सब्र का फर्क है। अ सोल्जर डजंट फाइट बिकॉज ही हेट्स व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ हिम, ही फाइट्स बिकॉज ही लव्स व्हाट ही लेफ्ट बिहाइंड। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि हालांकि उसके अंदर दिख रहा होगा कि वो एक सैलरीड पर्सन है, जॉब पर है, फैसिलिटीज मिल रही हैं, पर्क्स, बेनिफिट्स, बहुत कुछ मिल रहा है. बट अ रियल सोल्जर, ही कुड हैव गॉट जॉब एनीवेयर एल्स, ही कुड हैव अर्न मनी एनीवेयर एल्स आल्सो, बट अ रियल सोल्जर इज हैविंग दिस कॉन्शियसनेस. ही डजंट हेट, बट मोर देन दैट ही लव्स व्हाट ही हैज लेफ्ट बिहाइंड. तो इसलिए यहां पर हम जब त्याग, सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं, तो सेल्फलेस और सेल्फिश. सेल्फलेस इज आउट ऑफ लव ऑलवेज. अ मदर सैक्रिफाइसेस सो मच फॉर द चाइल्ड. वहां पर तो आपने देखा एक औरत, उसका बच्चा नहीं था वो, फिर भी उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ sacrifice which is out of love, it is selfless. And whenever there is sacrifice which is out of lust, jo us video ke andar aapne dekha, out of that inhuman greed, that is always selfish. To yahan par hum dheere dheere aap logon ko itne udaharan hum kyon de rahe hain, ye sab batane ke liye ki hame किस स्तर पर हम थे, किस स्तर पर अब हम हैं, और हमें धीरे धीरे किस स्तर तक पहुंचना है. इस एक गुण को लेकर हमारे अंदर जो क्षमता है बलिदान करने की, इस क्षमता को उजागर कर इसकी पराकाष्ठा तक पहुंचना है. रीचिंग द जेनिथ ऑफ दिस एबिलिटी विच वी हैव टू सैक्रिफाइस. यहां पर आपको हम एक और छोटा सा वीडियो दिखाएंगे. अक्सर ये व्हाट्सएप में आपने देखा होगा, परंतु आज के हमारे इस पॉइंट से बहुत ही रेलेवेंट है. सैक्रिफाइसिंग समथिंग अगेन आउट ऑफ लव. सो दिस इज अ स्मॉल अनदर वीडियो विच इज एंटाइटल्ड द लाइंग डैडी, झूठ बोलने वाला एक पिता. हरे कृष्णा. दिस इज जस्ट अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ मच वी हैव विद इन अस द एबिलिटी टू लव समवन, दैट वी कैन गो टू सच एन एक्सटेंट. मतलब आज हम कलयुग में जितनी नफरत देख रहे हैं, उसका फ्लिप साइड क्या है कि लोगों के अंदर उतनी ही क्षमता है प्रेम करने की. यदि हमारे अंदर इतनी क्षमता प्रेम करने की नहीं होती, तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नफरत करने की नहीं होती. इट्स जस्ट रॉन्गली चैनल्ड. तो इसलिए ये सब चीजें समझने, देखने के बाद हमें हमारे अंदर परख कर देखना है कि क्या मैं भगवान कृष्ण जो मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं, जैसे कि ये अपने डैडी के विषय में कह रहे थे, हमारे परम डैडी, परम पिता कौन है? श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, जो कि हमें न केवल इस जीवन में बल्कि हमारे हर एक जीवन में, चाहे कैसा भी जीवन हमने जिया हो, चाहे कोई नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, उसको उसका अन्न, सूर्य की रोशनी, पीने के लिए जल इत्यादि, उसके भरण पोषण के लिए सब कुछ प्रदान करके देते रहना हर एक योनि में, हर एक जीव को, पूरी सृष्टि में. हु कैन बी अ मोर लविंग डैडी देन कृष्ण? And how much are we sacrificing? How much are we sacrificing just to acknowledge the necessities which we are so very, very conveniently enjoying every single day? जैसे एक क्लास में टीचर ने कहा बच्चों से, जो सेवन वंडर्स हैं वर्ल्ड के, सात अजूबे, उसका लिस्ट निकाल. तो एक लड़की उसने उसका लिस्ट कुछ और ही था. हम सब सुने हैं सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल भी अपना एक उसके अंदर. ये लड़की ने जो लिस्ट निकाली और जब टीचर ने इस लड़की के उस अजूबों की लिस्ट पढ़ी तो स्कूल के सिलेबस के स्टैंडर्ड के अनुसार उसको जीरो मार्क्स मिला. हाँ, लेकिन ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 100 में से 100. उसने क्या लिखा, आई कैन सी एवरी डे, इज दैट नॉट सो वंडरस. आई कैन हियर, आई कैन टेस्ट, आई कैन स्मेल, आई कैन थिंक, आई एम अलाइव डिस्पाइट ऑफ डेथ ऑल अराउंड मी, आई एम स्टिल अलाइव. इज दिस नॉट वंडरफुल. ये सब आप लिखो, आजकल के सिलेबस में इसको जीरो मार्क्स मिलता है. क्यों? क्योंकि हम लोग जानबूझ के जो हमारे अंदर क्षमता है ये सारे फाइनर इमोशंस को, इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं व्हाट इज रियल एजुकेशन. रियल एजुकेशन मींस दैट विच कम्स आउट फ्रॉम विद इन. एजुकारी इज अ लैटिन वर्ड, ड्रॉ आउट व्हाट इज विद इन. तो इसलिए जब हम ये सारे इमोशंस जैसे टॉलरेंस हो गया, सैक्रिफाइस हो गया, ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा आजकल. स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे नट बोल्ट मशीन्स को तुम ऑपरेट कर सको और कैसे उनको ऑपरेट कर तुम पैसे कमा लो. दैट्स इट. बट व्हाट अबाउट आवर लाइफ. हाल ही में मैं कुछ भक्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि आप देखो आजकल जो सिस्टम है, इवन जो मैरिटल सिस्टम, मैरिज सिस्टम ऐसा हो गया है कि सेल्डम वी फाइंड नाउ डेज इन अ रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ आर हैप्पी. सेल्डम, मतलब अगर कोई बहुत खुशहाली का जीवन जी रहा है, एक दाम्पत्य जीवन उस प्रकार का, तो लोग कहते हैं कि भाई तुमको तो गिनीज बुक में आना चाहिए. डिवोर्सेस, हमने इसकी अक्सर चर्चा की है. तो आप देखो मैक्सिमम डिवोर्सेस दो कारणों के वजह से होते हैं, कैरेक्टर और बिहेवियर. लेकिन शादियां किसके बलबूते पर हो रही हैं, कैरेक्टर और बिहेवियर तो लास्ट में चेक किया जाता है. सबसे पहले क्या क्या चेक किया जाता है, पैकेज. पे पैकेज क्या है, दिखने में कैसा है, घर कहाँ का, कहाँ है इसका रहने वाला, घर कितना बड़ा है, एड्रेस का, ये सारी चीजें. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ योर मैरिज इज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू क्रम्बल, डेफिनेटली डिवोर्सेज आर गोइंग टू टेक प्लेस बेस्ड ऑन कैरेक्टर एंड बिहेवियर. If you would have initially looked for character and behavior, there would have been no divorces. Where is the education for character and behavior? Temples like this, which is optional. What is compulsory? Go to college, school, university. What is compulsory over there? Figures, numbers, machines. That's it. तो कहां बलिदान और कहां प्रेम, कहां पर सहनशीलता, सैक्रिफाइस. दूर दूर तक ये सारे शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते लोग. अपने जीवन में उतारना तो बहुत दूर की बात है, आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में ये शब्द भी नहीं बोले जाते. त्याग, याद है आपको, कभी आपने ऑफिस में या किसी सोशल फंक्शन में त्याग ये शब्द यूज किया हो? कई बार तो हमको पूछना पड़ता, प्रभु त्याग का मतलब क्या है, सहनशीलता का मतलब क्या है. सो सैक्रिफाइस इज ऑलवेज फॉर अ बिगर गेन. ऑफ कोर्स व्हेन वी लिसन टू द गीता एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल सैक्रिफाइस, वी are for the biggest gain. But the logic is हमको अगर कुछ भी हासिल करना है अभी की स्थिति से ज्यादा अच्छा, तो हर समय हमारे अंदर वो एक सैक्रिफाइस की भावना होना जरूरी है, और उसको कल्टीवेट करते 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 हमें एक ऐसे स्तर तक पहुंचना है। आज के हमारे इस सेशन के कंक्लूजन में, हालांकि इसका एक एक्सटेंशन हमारे नेक्स्ट बुधवार के क्लास में होगा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने याज्ञिक ब्राह्मणों की उस कथा के द्वारा ये बताया कि एक्चुअल सैक्रिफाइस क्या होना चाहिए और गलत सैक्रिफाइस क्या होता है, उसकी चर्चा हम अगली बार करने वाले हैं। लेकिन संक्षिप्त में आज की जो हमारी चर्चा इस मुद्दे के ऊपर हमने की सैक्रिफाइस के, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक साइकोलॉजिकल टेस्ट अमेरिका में किया गया। इसका हमने एक मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाया था, जो आज फिर से हम दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टेस्ट हुआ बच्चों के ऊपर। मार्शमैलो वहां पर वेस्ट में एक मिठाई उसको कहते हैं, मिठाई जैसी होती, बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये टेस्ट इस प्रकार से था कि छोटे बच्चों को ये कहा गया कि तुम्हारे सामने ये 2 मार्शमैलो रखे गए, या 1 या 2 जो भी, यदि तुम इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें इसके बदले एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री में। इफ यू सैक्रिफाइस फॉर अ वाइल यू विल गेट अ बिगर गेन। तो ये टेस्ट इनके ऊपर क्यों किया गया, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े हुए, और जो बच्चे टेस्ट में फेल हुए आप देखोगे उस वीडियो के अंदर, कई जो है उनसे रुका नहीं गया, सामने मिठाई है, कोई नहीं है कमरे के अंदर, कौन देखता है। हमको ये वीडियो देखकर हंसी आएगी और हमको लगेगा कि क्या छोटे बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन वही बच्चे बड़े हुए तो जिन बच्चों ने सैक्रिफाइस दिखाया वो बहुत प्रगति की। अमंगस्ट द चिल्ड्रन दोज हु सैक्रिफाइस्ड देयर मार्शमैलो 90% ऑफ दोज चिल्ड्रन वर सक्सेसफुल, एंड दोज चिल्ड्रन who couldn't resist, who couldn't sacrifice, they always led a life of giving into temptation, and they were just ordinary rank and file people. तो बहुत ही मेरे को ये interesting psychological test लगा। कई बार हमको भी भगवान इसी प्रकार से test करते हैं, और फिर हम लोग इसकी चर्चा अगली बार करेंगे कि कैसे भगवान हमारा भी मार्शमैलो टेस्ट लेते हैं। हमको लग रहा होगा ये वीडियो देख के बच्चों को उनके साथ मस्ती कर ली, भगवान हमारे सामने भी हमको टेस्ट करते हैं। आर वी विलिंग टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर अ वर्दी एंड मोर इंपॉर्टेंट गोल टू अचीव, और आर वी लाइक एनिमल्स वांटिंग टू जस्ट गिव इन टू टेम्पटेशन एंड जस्ट लिव अ लाइफ बेस्ड ऑन आवर कार्नल डिजायर्स। So this is the conclusion of our tonight's talk.
We decided to see if there is a visual of what it's like in the midst, after, before, the whole way temptation works.
So yahi principle hai सैक्रिफाइस का, जिसकी हमने शुरुआत की आज के हमारे सेशन में। जबकि अर्जुन को दिख नहीं रहा था कि वो जो बलिदान करें या जो भगवान बलिदान अपेक्षा कर रहे हैं अर्जुन से, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अर्जुन के द्वारा पूरे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हुई उस त्याग, उस बलिदान के द्वारा। तो ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट मार्शमैलो का उन्होंने किया बच्चों के ऊपर, तो यही उसमें दर्शाया गया, इफ यू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर अ हायर कॉज विद द फेथ एंड विद प्रॉपर गाइडेंस यू विल बी रिवॉर्डेड ऑन द अदर साइड डेफिनेटली। और इसके ऊपर हम आगे और चर्चा करेंगे। अगली बार हमारे चर्चा रहेगी लाइफ लेसन्स फ्रॉम अ फायर सैक्रिफाइस। 8 lessons from wives of yagyik brahmanas blessed by krishna ki inhone ek aisa yagya shuru kiya brahmano ne parantu us yagya ka parinam kya hua aur unki tulna mein in brahmano ki patniyon ne jo parityag balidan dikhaya to bhagwan ne in dono ke dwara hame samjhaya ki asli balidan ya tyag kya hai what is real sacrifice that we'll discuss in our next session hare krishna 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 hare 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 ram 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 jai shri prabhupada ki jai granth raj shrimad bhagavad gita ki jai dai gaur premanandi ki